आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
The media people, the academic elites, and probably the business people, they will think there's no democracy in China, dictatorship, authoritarian, and so on and so forth.
आज हम दो अलग-अलग प्रबंधनों, चीन और अमेरिका के जरिए दुनिया भर में लोकतंत्र के अलग-अलग नजरियों को समझ रहे हैं। मोबो गाओ अब खबरें नहीं देखते, उन्हें उन पर विश्वास ही नहीं रहा।
They are too biased. I read and listen to what the outside people say about China, and lots of them are very insightful, but lots of them are actually wide off the mark. Lots of the commentators in Australian media, they have never touched a feet on China. They think they know China.
प्रोफेसर गाओ यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में चाइनीज स्टडीज के विशेषज्ञ हैं। वे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पूर्व में एक गांव में ही पले बड़े भी हैं। SBS एग्जामिन्स ने उनसे बात की और समझा कि चीनी लोगों के लिए लोकतंत्र के क्या मायने हैं और वे इसे कैसे समझते हैं, क्योंकि अलायंस ऑफ डेमोक्रेसीज फाउंडेशन के हवाले से आए आंकड़े सुझाते हैं कि मुख्य भूमि चाइना में रहने वाले 83% लोगों का यही विश्वास है कि वे एक लोकतंत्र में रहते हैं।
The Chinese would argue that there is what is called substantive democracy or consultative democracy.
जहां परामर्शात्मक यानी सलाह लेकर चलने वाले लोकतंत्र की बात आती है, प्रोफेसर गाओ का कहना है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सत्तारूढ़ होने के बावजूद भी कुछ और छोटी पार्टियां भी मौजूद हैं।
These parties were not allowed to compete in formal democracy, but they have been playing a role in making decisions and making feedbacks to the policy makers at the top. Some people might say this is a formality and the Communist Party would do whatever they want. Theoretically, it is true, and sometimes that's what they did. But very often they do listen to them and they have feedbacks. So that's one way of saying it. It is a democracy. In terms of consultation.
मौलिक लोकतंत्र के नजरिए से प्रोफेसर गाओ पीपल्स कांग्रेस की बात करते हैं, जिसका चुनाव हर स्तर पर होता है।
So all the laws, for instance, regulations, the Communist Party policy makers can make them, but it has to be passed by the People's Congress. But then, of course, you would say, oh, you have to pass, otherwise you'll be punished. In a sense, it is true, but on the other hand, it's a formality and it does work sometimes.
वे मानते हैं कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र में अंतर है।
Personal liberty. I like that. I enjoy that. That's why I like staying in a country like Australia, because it does protect personal liberty. But that does not mean it is the same as democracy.
प्रोफेसर गाओ का कहना है कि लोकतंत्र के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो चाइना में काम करते हैं और जिन्हें दूसरे देशों द्वारा अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।
We can't accept China to copy the Western style of democracy. China is a very complex society. In Australia, look, it's 27 million people. That's smaller than the people in Shanghai alone. And it's easier to run a small place. If you have a kind of Western style democracy, China might disintegrate.
लोकतंत्र हमेशा एकदम सही या एकदम गलत के पार्ट में नहीं बांटे जा सकते, और ये हर देश पर लागू है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका।
So there's a really good long running by now survey by the Economic Intelligence Unit which now calls the United States a flawed democracy, ranking far below countries that it would most likely look at as its equals.
ये थे मार्कस वैगनर। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग में कानून के प्रोफेसर हैं।
The difference in the US is that the political culture with its polarization has led to such deep divisions that trust is no longer in place to the extent that I would think it's necessary to call the US a healthy democracy.
प्रोफेसर वैगनर का कहना है कि अमेरिका में इस समय संवैधानिक मूल्यों पर समझौता होता दिख रहा है।
Understandings of what a politician should or should not do. undermining long-held beliefs that then engender trust in the constitutional system in the U.S. That really erodes the foundational pillars of democracy.
उनका कहना है कि ये अमरीकी लोगों के लोकतंत्र को देखने के नजरिए को भी प्रभावित कर रहा है.
Today you see this in the House Freedom Caucus, the MAGA movement, and all of this sort of goes towards a deep partisan divide, conflicts over racism, immigration, socioeconomic inequalities are growing, the erosion of voting rights, and then the questions over reproductive health, the rights of LGBTQI plus people, school curricula even, the banning of library books, and all of that contributes to that. And at this point in time, even compared to the last 15 or 30 years, we see a very low level of trust in U.S. democratic institutions.
लेकिन प्रोफेसर वैगनर के अमरीकी लोकतंत्र के किताबी नजरिए के बनिस्बत आम अमरीकी अपने लोकतंत्र को कैसे देखते हैं?
I do think that the very large majority of people in the US are still proud of a version of the history that they like to tell themselves. The US story has been rather glorious, and there's over the last decades raised questions about some of these elements, and then that then goes towards the sort of erosion of deeply held narratives that might not make the country look as heroic as it once might have looked to lots of people.
दुनिया भर में इस साल रिकॉर्ड चुनाव हो रहे हैं और इतने मतदाताओं के बीच लोकतंत्र को लेकर नजरिया भी निरंतर पलट रहा है. भ्रामक जानकारियों पर और अधिक जानने के लिए जाएं sbs.com.au/sbsexamines पर. इस रिपोर्ट को आपके लिए SBS Examines से ओलिविया डी योरियो और SBS हिंदी से प्रशाली जैन ने प्रस्तुत किया. हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के YouTube चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर. आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो, टीवी चैनल 305, SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी.
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद. हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं.